ओम शांति। जैसे ब्रह्मा के लिए गायन है, हमारा गीत भी है। स्याही बने समुंदर और जंगल बने कलम, फिर भी ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। उसी प्रकार यदि हम हमारी दादियों की गाथा लिखना शुरू करेंगे, दादियों की विशेषताएं लिखनी शुरू करेंगे, तो वो भी सारी जितनी भी हम याद कर करके लिखे सारी कम ही पड़ेंगी। हर एक दादी में बाबा ने इतनी सारी विशेषताएं भरी हुई थी और उन्होंने बाबा से जो कुछ सीखा था सब कुछ अपने लाइफ में प्रैक्टिकल में लाया था। अगर दादियों को देखा, माना बाबा को देखा और मम्मा को देखा, तो आज यहाँ पे हम जो हमारी सीरीज चल रही है हमारे पूर्वज, उसमें हम सुनेंगे संतरी दादी के बारे में। तो संतरी दादी का ओरिजिनल नाम जो था सावित्री था, लेकिन जैसे किसी ने बताया कि ब्रह्मा बाबा को दो फल बहुत प्यारे थे, एक आम और दूसरा संतरा। तो जब सीजन में संतरे आते थे तो खास, वैसे तो हमने स्कूल में पढ़ा है कि नागपुर के संतरे काफी फेमस होते हैं, लेकिन इसमें किसी ने बताया और पढ़ा कि दार्जिलिंग के संतरे जो होते हैं काफी फेमस होते हैं और बहुत मीठे होते हैं। तो सीजन में जो संतरे दार्जिलिंग से आते थे खास, और बाबा जो संतरी दादी को बाबा ने से ये काम दिया था कि उसका रस निकाल के सभी को बांटना। तो ये उस समय की बात है जब शिव बाबा की पदरामणी नहीं हुई थी ब्रह्मा बाबा के तन में, और उस समय संतरी दादी जो है संतरे का रस निकालकर जो भी लोग होते थे, घर वालों को भी और साथ ही साथ दुकान में भी जो लोग बैठे होते थे, क्योंकि बाबा को जो था नीचे दुकान और ऊपर मकान वैसा सिस्टम था, तो जो भी दुकान में भी लोग जो बैठे होते थे, ग्राहक हो चाहे कोई भी हो, चाहे कर्मचारी भी क्यों ना हो, सभी को संतरी दादी जो है संतरे का रस देती थी। इसलिए भी उनका नाम बाबा ने संतर रखा। और जब वो ध्यान में गई फर्स्ट टाइम तो कृष्ण को देखा और उनकी आंखों से जो है आंसू बहने शुरू हो गए। तो बाबा ने कहा कि देखो जैसे संतरे का रस टपक रहा हो, इसलिए उनका नाम संतर रख दिया। लेकिन उनका ओरिजिनल नाम जो था सावित्री था, और उनका जो अलौकिक नाम था वो निर्मल इंद्रा नाम था उनका। तो संतरी दादी जो है लौकिक में जो भाव विश्व किशोर थे उनकी युगल थी, और ब्रह्मा बाबा यानी दादा लेखराज, ये तीन भाई थे। पहले भाई का नाम था तुलसीदास, दूसरे का नवल राय, और तीसरे जो थे ये दादा लेखराज। तो जो पहला भाई जो था तुलसीदास, उनके बेटे थे भाव विश्व किशोर, और ये भाव विश्व किशोर की युगल थी संतरी दादी। इनका एक बेटा भी है खुशाल भाई, जो अभी अमेरिका में है। तो जब जैसे बचपन पहले से हम देखते आए, इंडिया में सिस्टम होता है कि बचपन में ही कम उम्र में ही शादी कर देते थे, तो संतरी दादी भी जब बाबा के घर में आई थी शादी करके तो 15 वर्ष की थी। और जो ब्रह्मा बाबा की या दादा लेखराज की युगल जो थी यशोदा माँ, वो जो भाव विश्व किशोर की माँ, माना ब्रह्मा बाबा की भाभी, बड़े भाई की वाइफ, ब्रह्मा बाबा की भाभी थी, उनकी भांजी है लौकिक में यशोदा माँ, दादा लेखराज की युगल जसोदा माँ, तो वो उनकी भांजी थी लौकिक में। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो है भाव विश्व किशोर को अपने पास में ही रखा, और भाव विश्व किशोर हमेशा बाबा की मदद करते थे बिजनेस में। तो लगभग हमेशा वो कलकत्ता में ही रहे, और इसलिए शादी के बाद जो है संतरू दादी भी ज्यादातर कलकत्ता में ही रही। सिंध हैदराबाद में काफी कम समय थी शादी के पहले, लेकिन बाद में जो है कलकत्ता में ज्यादा समय रही। तो दादी की ये विशेषता थी कि दादी पहले से ही काफी कम बोलती थी और बहुत धीरे बोलती थी। और जब वो बाबा के घर में आई थी तो उनकी उम्र जो थी 15 साल थी, लौकिक एज जो थी 15 साल थी। तो जैसे होता है रिवाज की घूंघट आदि निकालना वगैरह ससुर के सामने, तो वो जब भी जाती थी बाबा के सामने तो घूंघट वगैरह निकाल के जाती थी। तो बाबा ने उन्हें मना किया था कि जैसे पालू माना निर्मल शांतिया दादी का जो ओरिजिनल नाम था, पालू नाम था उनका, प्यार से उनको घर में पालू कहते थे। क्योंकि उस समय जो एक आम आता था काफी फेमस था कलकत्ता में, पाली नाम का आम, तो बाबा हमेशा कहते थे पाली मीठो आम। तो बाबा हमेशा कहते कि जैसे पाली आम मीठा है वैसे आपको भी मीठा बनना है, तो इसलिए निर्मल शांता दादी का नाम पालू था और दूसरी जो बेटी थी उनका नाम पुट्टू था। तो बाबा हमेशा कहते कि जैसी पाली और जैसे पुट्टू वैसे ही संतरु, तो इसको भी बाबा ने कभी बहू के रूप में नहीं देखा, हमेशा अपनी बेटी के रूप में ही देखा। तो इनको पूरी छूट थी कि जैसे बाकी की बेटियां हैं या निर्मल शांता दादी है और पुट्टू दादी जो है वो जैसे घर में रहती हैं बिना घूंघट आदि ओढ़े, उसी तरह आप भी रह सकती हो करके। इवन वो चुन्नी वगैरह भी लेती थी सर पे, तो बाबा ने उसके लिए भी मना किया था। तो पूरा तरह बाबा ने अपनी बेटी के रूप में उन्हें स्वीकारा था ऐसे। तो वो बाबा के साथ में वहां रहती थी, और जब भाऊ विश्व किशोर भी बाबा के साथ वहीं रहते थे, बाबा का राइट हैंड बनकर सारा बाबा का बिजनेस आदि संभालते थे। तो संतरु दादी जो अपने अनुभव में बताती हैं कि जब से शिव बाबा की पदरामणि हुई तो यज्ञ की मुख्य संदेशी जो थी संतरी दादी थी। बाबा को भी अगर कोई मैसेज वगैरह लेना होता था तो बाबा संतरु दादी को ही भेजते थे। संतरु दादी बाबा के लिए जो भी मैसेज होता था, प्राइवेट मैसेज या यज्ञ का मैसेज, जो कुछ मैसेज होता था वो संतरु दादी लेके आती थी। तो जैसे उन संतरु दादी ने बताया कि बाबा से उन्होंने और मम्मा से बहुत सारे गुण सीखे हुए। तो बाबा को जब से वो पहले से ही जब भी देखती थी, जब से शिव बाबा की पदरामणि नहीं हुई थी, लेकिन बाबा का जो व्यक्तित्व है दादी को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता था। बाबा कुछ उन्हें अलग लगते थे कि कुछ अलग है बाबा, और हमेशा वो देखती थी कि बाबा जो सवेरे जो उठने के बाद पूजा पाठ आदि करते थे, तो दादी का भी नियम था कि दादी भी 3 बजे उठ जाती थी सवेरे, और जसोदा माँ माला फेरती थी, तो बाबा हमेशा दादी को एक बोलते थे भजन गीत गाओ, तो दादी हमेशा कोई ना कोई गीत माना भजन याद करके रखती थी और बाबा को सुनाती थी। तो बाबा फिर सवेरे का जैसे पूजा पाठ आदि होने के बाद में फिर बाबा दुकान आदि पे जाते थे 11 बजे के आसपास, तो दादी का था कि वो बाबा के हाथ में इलायची देती थी जब बाबा नीचे 11 बजे दुकान में जाना शुरू होते थे। तो दादी ने बताया कि बाबा वैसे घर में खड़ाऊं पहनते थे, लेकिन जब दुकान में जाना होता था तो जूते आदि पहनते थे, और शाम को 5 बजे बाबा हॉकी खेलने जाते थे, और उसके बाद में आते थे। फिर घर में ही मंदिर था तो सब एक साथ में पूजा पाठ ध्यान जो भी है सब साथ में बैठ के करते थे। तो दादी ने बताया कि बाबा में विश्वास इतना था कि बाबा जब दुकान छोड़कर जाते थे तो जो नौकर थे कर्मचारी थे उनके ही विश्वास पे छोड़ के चले जाते थे। तो दादी ने बताया कि हम भी किस प्रकार से लोगों पे विश्वास हमें भी करना सीखना चाहिए, कि बाबा में बहुत बड़ा गुण था। बाबा जो उनके कर्मचारी थे उनको भी इस तरह से रखते थे कि वो चोरी आदि न करे, और उनके लौकिक घर का भी पूरा ध्यान रखते थे ताकि उनमें जो कर्मचारी है नौकर है उनके मन में किसी प्रकार की लालच की भावना न हो, या कोई जैसे कभी किसी में कुछ कमी होती है तो इंसान वो चीज लेने की सोचता है या चोरी करने की उसके मन में आती है, लेकिन बाबा इस तरह से रखते थे कि किसी के मन में कर्मचारी के मन में किसी भी प्रकार की भावना न हो चोरी की ना आए, तो बाबा उन्हें हर तरह से ध्यान रखते थे। तो संतरु दादी ने भी बताया कि कैसे उन्होंने बाबा से गुण सीखा विश्वास रखने का, कि हर किसी को जो है उसकी इच्छा जो भी है उसकी पूर्ति करो तो वो अपने आप उस तरह से चलेगा, उसके मन में कोई भी चीज लेने की लालच नहीं होगी, हवज नहीं होगी। फिर एक बार संतरी दादी को अपेंडिस का जो है दर्द होने लगा काफी, तो जब डॉक्टर आया और डॉक्टर ने आके चेक किया तो दादी के मुंह से आह ऐसे निकला जैसे होता ना आदमी कहराता है, तो बाबा ने सुना तो बाबा ने पूछा कि बच्ची आपकी आवाज थी, तो संतरु दादी ने कहा जी बाबा, तो बाबा ने कहा कि इतनी छोटी से इसमें आप इतना कह रहा रही हो और आवाज ऐसे हो रहा है, अगर कोई कल आपको डांटेगा तो आप क्या करोगी, आप तो रोने लगोगी, तो आप में सहन शक्ति तो है ही नहीं कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा ने कहा। तो तब से संतरु दादी ने पक्का किया कि बाबा ने जैसे प्यार से पाठ पढ़ाया सहनशीलता का, तो सहनशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए, तो दादी के जीवन में उसके बाद सहनशीलता आती गई। मम्मा भी जैसे कहती थी ना, अगर आपका पेट दुख रहा है तो आपका चेहरा क्यों खराब हो रहा है, वो भी सहनशीलता के गुण में ही आता है। जैसे हमने दादी प्रकाशमणि के लिए भी देखा था कि डॉक्टर आके इंजेक्शन लगा था तो दादी ऐसे साक्षी होकर देखती थी, जैसे कोई थर्ड पर्सन को हम देखते ना इंजेक्शन लगाते हैं तो कैसे कुछ फील ही नहीं होता है कि भाई सचमुच कोई इंजेक्शन लगा रहा है क्या हमको, तो वो जो देहभान से ऊपर की स्थिति होती है जब हम साक्षी होकर हमारे शरीर को देखते हैं तो वो अवस्था आती है, और बहुत प्रैक्टिस करके वो अवस्था आती है। तो बाबा ने इसे दादी को उस समय सिखाया जब दादी उस समय छोटी थी काफी, जो भी चीज हम बचपन से हमारे अंदर संस्कार हम लाते जाते हैं वही हमारे अंदर कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाते हैं। तो दादी ने जो है सहनशीलता का गुण बाबा ने जो दादी को पढ़ाया कि कैसे सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, तो इस प्रकार दादी ने अपने अनुभव में बताया कि किस प्रकार बाबा ने उन्हें सिखाया। फिर दादी जैसे दादी की रूटीन होती थी कि बाबा को इलायची वगैरह देना जब बाबा जाते थे, और उनके घर में 8 नौकर थे, तो दादी ने कभी कहा कि हमने तो भंडारे का मुंह भी नहीं देखा था, घंटी बजाते थे और हाथ में पानी मिल जाता था। तो दादियां जो हमारी उस घराने से आई हुई थी, और जब उसके बाद में यहाँ पर आए इंडिया में आए, उसके बाद बाबा ने उनको मनोहर दादी के साथ वो सेवा पे गई थी, जमुना के कंठे पर गौरी शंकर मंदिर था, तो वहां पर जाने के बाद वो जाते समय 2 पैसे के 1 किलो टमाटर लेके गई थी दादी, और वहां पे उन्होंने उसका रस निकाला, और वहां जो बाकी के साधु संन्यासी होते थे उनका चूल्हा जलता रहता था हमेशा, तो थोड़ा सा आटा था तो उन्होंने उसकी रोटी बनाई और उस टमाटर के रस के साथ में खाया। तो उन्होंने अपनी माँ को उसके बाद में लेटर लिखा यहाँ से कि देखो हमने ऐसा खाया यहाँ पे, तो कहने का भाव उनका ये था दादी ने जो बताया कि हमने लौकिक में क्या खाया हमको आज तक वो याद नहीं रहा, लेकिन हमने बाबा के घर में क्या खाया और किस रूप में खाया वो हमको याद रहा, क्योंकि उसमें बाबा की ताकत थी, उसमें बाबा की भावना थी। तो दादी का कहने का भाव ये था कि हमारे लौकिक में जो कुछ भी हो हमें वो याद नहीं करना चाहिए, एक बार हम बाबा के बन गए, जैसे कई बार हम सुनते हैं हमारे मुख से भी निकलता है कि हमारे लौकिक में ऐसा था और हमारे वहां पे वैसा था, लेकिन हम एक बार बन गए तो बाबा के प्यार में जो शक्ति है, बाबा की भावना में आके जो शक्ति है जो बाबा में, उन चीजों को हमें लौकिक की चीजों को याद नहीं करना चाहिए कि हमने लौकिक में ये किया और लौकिक में वो किया। तो दादी जैसे ट्रांस मैसेंजर थी, तो एक बार दादी का अनुभव है कि कराची में ही बैठे बैठे दादी वतन में चली गई, फिर वहां पे कुछ अनाज वगैरह सुखाया हुआ था, तो बाबा ने कहा कि फटाफट सारा अनाज वगैरह समेट लो सारा, बारिश आने वाली है। तो दादी ने कहा भी तो बारिश का मौसम भी नहीं है और बादल आदि भी नहीं है, बारिश कहाँ से आएगी। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची सब अनाज आदि समेट लो। तो दादी जब आई नीचे फिर दादी ने कहा कि सब अनाज आदि समेट लो, बारिश आने वाली है, तो सब लोग हंसने लगे दादी के ऊपर। तो दादी ने कहा कि नहीं है बाबा का संदेश है, और जब उन्होंने सारा अनाज आदि समेट लिया केवल एक बोरी ही बाकी रह गई थी और बहुत जोर से बारिश आ गई। तो ये दादी का जो है संदेशी का जो पार्ट था, जैसे बताया कि ब्रह्मा बाबा जो है संदेशी दादी को हमेशा यूज करते थे ऐसे अपनी कुछ मैसेज वगैरह लाने के लिए यज्ञ का, और ऐसे एक दादी का ये है कि बाबा ने जब एक बार भेजा साकार में ब्रह्मा बाबा ने, तो दादी का ये नियम था कि वो जब भी जाती थी ट्रांस में तो संदेश लेने तो कुछ ना कुछ लेकर जाती थी। तो दादी ने एक प्लेट में 8-10 मिश्री के दाने रखे और 8-10 इलायची रखा, और जैसे होता है कि इसको रुमाल से ढककर दादी ट्रांस में गई बाबा के पास। तो मैसेज आने के बजाय खुद शिव बाबा आ गए, और फिर मुरली आदि चली, कोई ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं थी लेकिन जैसे सबको मालूम पड़ा बाबा आ गए, तो लगभग 300-400 भाई बहने थे सब आ गए, फिर मुरली आदि चली, और उसके बाद कहा कि टोली देना शुरू किया। तो एक दूसरी बहन उठकर आई और बाबा को कहा कि बाबा मैं आपके हाथ में देती हूँ टोली, मतलब संतरी दादी के तन में जब बाबा आए थे, तो बाबा ने मना किया और बाबा खुद अपने हाथ से उस रुमाल के नीचे हाथ डालते थे और सबको मुट्ठी भर भर के बाबा ने टोली दी, और 300-400 भाई बहने थे करीब। और उसके बाद में फिर बाबा गए, और जब उसके बाद में रुमाल हटाया तो उतने के उतने ही मिश्री के दाने, 8-10 मिश्री के दाने और 8-10 इलायची, जितना दादी ने रखा था उतने का उतना ही था। तो ये हमने रमेश भाई के मुख से सुना था कि किस तरह, मतलब उन्होंने एक बार संतरी दादी को बताया कि जैसे भक्ति मार्ग में साधु संन्यासी आदि चमत्कार आदि करते है ना, तो आपने भी कुछ कभी चमत्कार आदि देखा होगा सुना होगा ऐसे, तो आप बताओ। तो दादी ने अपना अनुभव सुनाया था क्योंकि 8-10 मिश्री के दाने थे और उसके बाद भी मुट्ठी भर भर के हरेक को। तो रमेश भाई ने वही पूछा था संतरी दादी को कि आप कोई अनुभव सुनाओ, तो संतरी हाँ लिख के आओ कुछ हमें करेंगे। तो दादी हमेशा कहती थी कि दादी जो जैसे दादी का नियम था, सवेरे उठने के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब आदि पढ़ती थी, सुखमणि पढ़ती थी और पांडव गीता पढ़ती थी, भागवत गीता आदि पढ़ती थी, और उसके बाद में दादी की जो है रूटीन चालू होती थी। और जब बाबा के आने के बाद में भी पदरामणि होने के बाद भाई दादी जो विटामिन की एक गोली खाती थी और हॉर्लिक्स पीती थी, जैसे किसी ने बताया कि दादी की लिखा विदेश से हॉर्लिक्स आता था, ये बाद की बात है जब दादी कलकत्ता में रहती थी, क्योंकि दादी जो है बाबा के साथ में रही और उसके बाद में 70 तक यज्ञ में थी। और यज्ञ का जो भी कारोबार आज मुन्नी बहन देखती हैं, यज्ञ का स्टॉक वगैरह जो भी कपड़े आदि का, वो सब संतरू दादी देखती थी। और 1970 में दादी जो है कलकत्ता में गई और तब से दादी लगभग कलकत्ता में ही थी निर्मल शांता दादी के साथ में। तो जो भी साम आता था यज्ञ में लोग तो निर्मल शांता दादी के पास देते थे, लेकिन निर्मल शांता दादी संतरू दादी के पास देती थी। तो यज्ञ का सारा स्टॉक जो है संतरू दादी देखती थी। तो हमेशा उसमें किसको क्या देना है, जो भी देना करना है, सारा इनके पास होता था। और बाद में जब धीरे धीरे दादी की एज बढ़ती गई तो दादी ने अपनी सेवाएं दूसरों को देना शुरू किया, दूसरों को बांट के निश्चिंत होना शुरू किया। तो ये दादी की विशेषता थी। जैसे बताया है कि दादी बचपन से ही काफी कम बोलती थी, धीरे बोलती थी, तो लोग पहले ही देख के दादी को बोलते थे कि आप तो जैसे देवता हो। जो गुण थे दादी के, देवता ही गुण थे। और किसी ने बताया कि दादी बहुत एक्यूरेट थी हर चीज में। वैसे सभी दादियों की विशेषता है कि दादियां बहुत एक्यूरेट है अपने इसमें, जो भी उनको सेवा दी जाए। तो एक बार यहाँ से प्रकाशमणि दादी ने एक आम भेजा था, खास कोई विदेश से आम आया था तो कलकत्ता भेजा था कि ये सबको बांट के खिलाना, कम से कम 25-30 लोगों को तो खिलाना ही चाहिए, 20-25 लोगों को। तो संतरू दादी ने वो कम से कम 35-40 लोगों को खिला दिया, काट के इतने छोटे छोटे टुकड़े करके सबको खिलाए। फिर एक बार बताते हैं कि जब दादी कलकत्ता में थी तो दादी जब सब्जी आदि काटती थी तो एक ही साइज में काटती थी दादी सब्जी, कोई भी सब्जी छोटी बड़ी नहीं होती थी। तो एक बार निर्मल शांता दादी और संतरू दादी ने दूसरी बहनों को कहा कि आप ये सब्जी काटो, आलू आदि बैंगन की सब्जी थी। तो बहनों ने फटाफट काट के और सब्जी वगैरह बना के फिर दिया। तो 4-5 भाई भी थे। तो उसके बाद जब संतरू दादी की ये विशेषता थी या आदत कहो कि वो भोजन के बाद में चक्कर लगाती थी, कुछ प्रोग्राम आदि होता था सबको भोजन आदि ठीक से मिला है या नहीं जो भी। तो उन्होंने जब देखा 4-5 भाई बैठे और हर एक की थाली में सब्जी है, तो बाद में आके उन्होंने पूछा बहनों की कि सबको सब्जी आदि बराबर मिली। तो बहनों ने कहा कि हाँ बराबर मिली। फिर दादी ने सेकेंड टाइम दोबारा पूछा, फिर बहनों ने कहा कि हाँ। फिर दादी ने थर्ड टाइम वापस पूछा, तो फिर बहनों को लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, दादी तीन बार पूछ रही है। तो दादी ने कहा कि देखो आपने जो आलू काटे थे कैसे छोटे बड़े काटे थे, तो किसी के थाली में ज्यादा सब्जी लग रही थी और किसी के थाली में कम सब्जी लग रही थी। तो अगर कोई सेंसिटिव होगा जो ज्यादा सोचने वाले होते हैं तो उसके संकल्प चलेंगे, देखो इस भाई को ज्यादा सब्जी दी है, माना इससे ज्यादा लगाव झुकाव है इनकी तरफ, हमको कम सब्जी दी है। जबकि सब्जी सबको एक ही उतना ही दिया था, लेकिन आलू के टुकड़े ज्यादा बड़े थे किसी की थाली में तो सब्जी ज्यादा लग रही थी, किसी के थाली में आलू के टुकड़े कम थे तो सब्जी कम लग रही थी। तो दादी ने बताया कि देखो कोई अगर संस्कार वाला होगा तो कैसे उसके संकल्प चलेंगे। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग दूसरों के संकल्प चले। तो ये दादी की विशेषता थी कि दादी हर काम में एक्यूरेट रहती थी। और जैसे दादी ने बताया कि एक बार और दादी ने काफी जगह सेवाएं की, इंडिया में भी, पूना में भी गई, बेंगलोर में भी गई और विदेश में भी, यूएसए में गई है, जमैका में, लंदन में, काफी जगह पे दादी गई। तो जब दादी लंदन में और अमेरिका आदि में जाती थी तो दादी को तो इंग्लिश आती नहीं थी। तो जब वहां से निकलती थी वो सेंटर से या जिस जगह पे रहती थी वहां से वापिस आने के लिए, तो कागज के ऊपर लिखा के लेती थी कि मुझे दूध चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और दुकान में जाके वो चिट्ठी देती थी कि क्या सामान चाहिए, क्योंकि दादी को तो इंग्लिश आती नहीं थी। और जब दादी लंदन में भी गई तो वहां पे एयरपोर्ट में उनको लेने के लिए आए थे, तो पूरे व्हाइट ड्रेस में जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो अपने भाई बहन आए थे, तो सबको ऐसा लगने लगा कि देखो जैसे फरिश्ते आए हुए करके। तो फिर काफी लोग मतलब भावना में दादी को सौगा दादी भी देते थे वहां पे, क्योंकि दादी लगती भी वैसी थी। और वाइट ड्रेस में होने के बाद में जैसे आप विदेश में जाओ तो वहां वाइट ड्रेस बहुत कम लोग पहनते हैं, लगभग हर कोई कलर वाले में ही होते हैं। तो सफेद में एकदम घूमने के बाद सबको ऐसे लगता था कोई फरिश्ते आए हुए जैसे यहाँ पे। तो ये दादी का लंदन का अनुभव है। फिर एक बार दादी के पेट में दर्द होता था तो दादी हॉस्पिटल तो नहीं जाती थी, जो भी कुछ करना है बाबा ही करते थे। तो दादी को जैसे दमा के भी प्रॉब्लम थी, तो जब भी दादी को दमा होता था तो बाबा दादी के सर पे हाथ रखते थे और दमा जो है शांत हो जाता था। तो एक बार दादी के पेट में दर्द हुआ तो दादी जाती नहीं थी हॉस्पिटल, तो बोला डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेशन आदि करना पड़ेगा शायद कुछ। दादी ने कहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाली हूँ, जो होना है मतलब यहीं पे होगा। तो फिर दादी ने अपने अनुभव में बताया कि वो बैठी थी तो रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बाबा सामने बैठे थे दादी के। दादी को ऐसे लगा मन सचमुच बैठे थे बाबा। फिर 4 बजे जब दादी की आंख खुली तो बाबा ने पूछा कि बच्ची नींद आई? तो दादी ने कहा हाँ बाबा नींद तो ऐसे आई नहीं इतनी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे पेट में कुछ कटकुट चल रहा है करके, कटाकुटी चल रही है जैसे कुछ ऑपरेशन आदि हो रहा है पेट में। तो फिर बाबा ने उनको उठाया, ठीक है बच्ची उठो अब यहाँ से थोड़ा दूर 10-15 कदम चलने के लिए कहा दादी को। तो दादी ने जब चल के देखा तो जो भी दर्द दादी था दादी का सब दर्द गायब हो गया। तो कैसे बाबा ने जो है योग में ही दादी का ऑपरेशन भी किया, चमत्कार। तो ये दादी के अनुभव हैं। और जैसे कई भाई बहनों के पास से हम सुनते हैं कि दादी मतलब यहाँ तो कम समय थी लेकिन कलकत्ता में ही दादी ज्यादा समय थी। और दादी जब कलकत्ता में 13 दिसंबर को दादी ने शरीर छोड़ा, 13 दिसंबर 1990 को, और 11 दिसंबर को वहाँ पे उनका भवन का काम चल रहा था भंगूर में, और भवन निर्माण का कार्य पूरा ही हुआ था और निर्मल शांता दादी यहाँ पे आ रही थी बाबा मिलन के लिए। तो इन्होंने कहा संतोष दादी ने कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और तुरंत वापिस आ जाऊंगी। और वो 11 तारीख को वहां से निकले फ्लाइट से और यहाँ पे पहुंचे, और 13 तारीख सदगुरुवार था और उसी दिन उन्होंने सवेरे ही 3 बजे शरीर छोड़ा नींद में ही। तो जब बाबा का मैसेज आया तो बाबा ने कहा कि बच्ची की जो कर्म बंधन था सारा कर्म बंधन पूरा हो गया था और बच्ची की आश थी कि मैं बाबा की गोद में ही शरीर छोड़ू, इसलिए फिर बाबा ने बच्ची को खींच लिया और बच्ची का सारे कर्म बंधन पूरे हो चुके थे। तो इस प्रकार उन्होंने 13 दिसंबर 1990 को शरीर छोड़ा। और जैसे बताया कि दादियां जो है काफी बड़े घराने से थी, और जैसे बताया कि उनके घर में 8-8 नौकर थे, घंटी बजाओ और पानी भी हाथ में मिल जाता था। तो दादी का जैसे बीमार आदि दादी होती थी तो जब बाबा की पदरामणि हुई उसके बाद में भाऊ विश्व किशोर सरेंडर हो गए, तो बाबा ने दादी को भी कहा संतरी दादी को कि आप भी सरेंडर हो जाओ। लेकिन उनके लौकिक में जैसे रिवाज होता था कि एक अलमारी होती थी जो भी कपड़े आदि रखते, और उसमें एक दूसरी छोटी अलमारी होती थी, तो घर में उनके नाम से कुछ भी पैसे आदि जो कुछ होते थे उसमें बॉक्स में डाले जाते थे। तो बाबा ने कहा कि जाओ पहले आप अपने घर में देख कर आओ, उनको पूछ कर आओ कि आपके नाम से उन्होंने क्या जमा करके रखा। फिर जब उन्होंने अपनी मम्मी को लेटर लिखा और जब वो गए वहां पे तो देखा कि उसमें कुछ चांदी के बर्तन आदि थे जो काले पड़ गए थे। काले माने क्योंकि उस समय चांदी के बर्तन ही यूज होते थे, लेकिन जैसे हम यूज नहीं करते तो काले हो जाते हैं, तो चांदी के बर्तन आदि थे और कुछ गिन्नी थी, गिन्नी माने सोने की जो अशर्फी होती कॉइन्स वो थी, और दूसरे कुछ पैसे आदि भी थे। तो फिर वो बाबा के पास लेके आई तो बाबा ने कहा कि देखो ये सारा जो है आपका बोझ था उनके ऊपर, इसलिए आप बार बार बीमार पड़ते थे, अभी जो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये दादी ने जो है बाबा के चरित्र के बारे में बताया कि बाबा जो है किस प्रकार से हर किसी को परख लेता था कि किसको क्या चाहिए, और उसी प्रकार से वो उनकी पालना भी करता था जिसको जो चाहिए। वैसे दादी ने एक अनुभव में बताया कि जब वो पाकिस्तान में थे वहां पे तो एक जो उनके बाथरूम साफ करने के लिए आती थी, तो वो भी बाद में जब शिव बाबा की पदरामणि हुई तो वो भी बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तो बाबा की गोद में जाती थी वो, तो जाने लगी। तो वैसे देखा जाए तो हम सोचेंगे भाई ये तो बाथरूम साफ करने वाला, कितना हम कम नीचे नजर से देखते हैं उनको, लेकिन दादी ने बताया कि बाद में वो भी तो गोपिका बन गई ना, बाबा की बच्ची बन गई वो, तो बाबा की गोदी में जाने लगी वो फिर। तो इस प्रकार से दादी के अनुभव है कि किस प्रकार से वो बाबा के साथ रहती थी और सारी सेवाएं आदि करती थी। और यहाँ पे भी जैसे बताया कि उनका यज्ञ का पार्ट में जो था मुख्य संदेशी का पार्ट था उनका, तो निर्मल शांता दादी को हमेशा आगे रखते हुए वो सब कार्य करती थी। तो रमेश भाई के पास से हमने सुना भी था और जैसे पढ़ा भी है कि जब ब्रह्मा बाबा अवेक्ट हुए तो जब 18 जनवरी को और 19 जनवरी को शाम को बैठे बैठे दादी को ऐसे कुछ प्रेरणा हुई कि शिव बाबा खींच रहे ऊपर, और दादी जाके संदली पे बैठ गई हिस्ट्री हॉल में, और उसी समय शिव बाबा जो है संतरी दादी के तन में आए और लगभग 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मुरली आदि चली। फिर बाबा ने कहा संतरी दादी को कि आप मुझे तो शरीर चाहिए, तो आप पूछो करके कि किसके शरीर में बाबा है। तो फिर संतरी दादी ने जो है गुलजार दादी को आके वापस से आके प्रकाशमणि दादी और रमेश भाई को बताया कि ऐसे ऐसे बाबा बोल रहे हैं। तो फिर रमेश भाई ने दूसरे दिन कहा 20 तारीख को कि नहीं आप खुद ही बाबा के पास जाके पूछो कि किसको निमित्त बनाया जाए। तो संतरी दादी वापस गई और फिर उन्होंने बाबा को पूछा तो बाबा ने कहा कि मुझे तो तन चाहिए, आप कोई भी तन दे दो मुझे, मुझे कुछ ये नहीं, लेकिन फाइनल आप लोग करो, बस मुझे तन से मतलब है, किसी का भी तन हो। तो फिर वापस आई, फिर कहा कि शिव बाबा ऐसे बोल रहे। तो फिर दादी प्रकाशमणि और रमेश भाई और संतरी दादी आपस में बैठ के इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुलजार दादी के तन में शिव बाबा है इस तरह से। तो प्रकाशमणि दादी ने कहा और रमेश भाई ने भी कहा कि आप तो यज्ञ की पहले से संदेशी रही हो, इतनी एक्यूरेट संदेशी हो, स्वयं ब्रह्मा बाबा की संदेशी थी, तो आप में ही शिव बाबा आने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर शिव बाबा है, क्योंकि यज्ञ की बहुत सारी बातें मुझे पता है और अगर मैं बाबा मेरे अंदर आएंगे और कुछ बोलेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि शिव बाबा नहीं बोल रहे, शायद संतरी दादी ही बोल रही है, क्योंकि संतरी दादी को बहुत सारी बातें पता थी यज्ञ की, तो लोगों के मन में संशय आएगा, उनका निश्चय हिलेगा कि सचमुच शिव बाबा बोल रहे हैं या संतरी दादी बोल रही है। तो उसके बाद में जो है गुलजार दादी का पाठ शुरू हुआ और गुलजार दादी के तन में जब 21 जनवरी को जब फर्स्ट टाइम बाबा आए अव्यक्त बाबा, तो गुलजार दादी के तन में आए। तो रमेश भाई हमेशा अपने अनुभव में बताते हैं कि इस त्याग को जो है मैं बहुत बड़ा त्याग मानता हूं, क्योंकि पहले जो शिव बाबा, जैसे हम आज गुलजार दादी के लिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो पिछले एक जन्म दो जन्म पवित्र थी और शिव बाबा ने उनका रथ चुना, तो कितनी बड़ी महान आत्मा होगी वो। तो जैसे संतरी दादी के तन में भी शिव बाबा आते थे तो संतरी दादी भी कितनी महान रही होंगी कि पहले से बाबा ने खुद उनको अपना मैसेंजर चुना और संदेश आदि के लिए यूज करते थे, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो उन्होंने उस पार्ट को आगे न चलाते हुए दूसरे को निमित्त बनाया, तो ये कितना बड़ा त्याग माना जाएगा इसको। हाँ वो जो 19 को एक तो 19 तारीख को आए थे, उसके बाद में भी आएंगे तो उसको वो रिकॉर्डेड नहीं है कहीं पे। हाँ 19 तारीख का भी रिकॉर्डेड नहीं है, 21 का है बाकी का आगे का, क्योंकि वो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी तो उस समय कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह किया नहीं होगा, उन्हें सिस्टम किया नहीं होगा, और दादी तो बैठे बैठे ही ट्रांस में चली गई 19 तारीख को, जैसे बताते हैं कि शाम को योग में बैठी थी और उसी समय चली गई दादी, तो ये बात दीदी को भी पता नहीं थी। तो जब 21 तारीख को गुलजार दादी संली पे बैठ रही थी तो दीदी ने गुलजार दादी को मना किया कि नहीं संतरी दादी बैठेगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाशमणि दादी ने, संतरी दादी ने, रमेश भाई ने बताया दीदी को कि नहीं हमने जो है मतलब गुलजार दादी को निमित्त बनाया हुआ है। तो उसके बाद में गुलजार दादी का पाठ शुरू हुआ इसमें आने का। तो जैसे संतरी दादी की बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं कि वो कम बोलती थी और एक्यूरेट थी, हर काम में बाबा का हाजी करती थी, तो उनका यही था कि जो भी कुछ बाबा हमको कहता है तो बुद्धि जो है बाबा के हवाले कर दो, कभी हमने सोचा नहीं कि इसमें क्या करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, बुद्धि से बाबा के आगे सरेंडर हो जाते थे। जैसे दादी विदेश में भी गई या बाकी जगह इंडिया में भी सेवा करने जाती थी तो दादी हमेशा जो कुछ बोलती थी बहुत सोच समझ के बोलती थी, जितना जरूरी है उतना ही बोलती थी। दादी का जैसे बताया कि बुद्धि बाबा के हवाले कर दो और बाबा जैसे चलाए जहां चलाए। कई लोग कहते भी थे कि दादी आपको ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए, वैसी सेवा करनी चाहिए, लेकिन दादी कहती थी बुद्धि आपने एक बार बाबा के हवाले कर दी तो बाबा को जैसे चाहिए बाबा अपने आप आपको टचिंग देगा और उसके हिसाब से आप चलेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हमने संतरी दादी के बारे में सुनी। ओम शांति।